तोला पुस्तक दसवी लेक्चर नंबर 18। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्छायाणम् नमो लोए सवसाहूणम् वेदगम् वेदगंथ संसिद्धम् सिद्धं प्रणमीय शिरसा वोच्छं वेदग महाहियारमहं। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयदेवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यति उषव आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। दसवीं पुस्तक जो वेदक नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 114 पर आ गए हैं। अभी तक हमने उदीर्णा की बात विस्तार से देखी, मूल प्रकृति में, उत्तर प्रकृति में, उसके एक एक प्रकृति और प्रकृति स्थान उदीर्णा। अब यहाँ नया विषय शुरू हो जाता है कि उदयावली में कितनी प्रकृतियां प्रवेश करती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो उदय रूप है, उदय रूप हो या अनुदय रूप हो, उदयावली में कितनी प्रवेश करती है उसकी यहाँ पर चर्चा चलेगी। तो यहाँ स्थान समुत्कीर्तना है, यानी कितनी प्रकृतियां एट ए टाइम प्रवेश करती है, तो उसको हम कहेंगे स्थान, और उस स्थान में कौन कौन सी प्रकृतियां हैं वो फिर बताएंगे। जैसे पहले पहले बताया कि 28 का स्थान, 28 प्रकृतियां प्रवेश करती है, तो उसका नाम बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मोहिनी के 28 के 28 बता दिए। दूसरी बार बताया कि 27 प्रकृतियां प्रवेश करती है, तो कौन सी नहीं करती है, तो सम्यक प्रकृति, जिसकी उद्वेलना पहले होती है। सम्यक प्रकृति की उद्वेलना होने के बाद 27 की सत्ता है और वो उदयावली में प्रवेश करती है, ऐसे कह दिया। उसके पश्चात उन्होंने कहा कि 26 प्रकृतियां प्रवेश करती है, तो 26 कब हो सकती है, तो एक तो सम्यक मिथ्यात्व की भी उद्वेलना हो गई एक बात, या दूसरी बात अनादि मिथ्या दृष्टि है, तो उसके भी वहां प्रवेश करती है। तीसरी बात कि जो 28 और 27 के सत्कर्म वाला जो उपशम सम्यक्त्व के सन्मुख ऐसा मिथ्या दृष्टि है, यानी वो अंतरकरण करता है, और जो नीचे प्रथम स्थिति में जो उसके आवली प्रमाण सत्ता है सम्यक सम्यक मिथ्यात्व की, उसको गला देंगे, तो वहां तो 26 का प्रवेश है, 25 तो चारित्र मुनि की और एक अभी मिथ्यात्व है वहां पर, इसलिए वहां पर भी वो घटित होता है। चौथी बात हमने देखी थी कि हाँ, उपशम सम्यक्त्व के बाद मिथ्यात्व सम्यक सम्यक मिथ्यात्व, इसमें से किसी एक का आकर्षण होता है, क्योंकि उपशम सम्यक्त्व के काल में तीनों उपशमित है। उपशम सम्यक्त्व के काल तो 25 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर उसमें से उदय रूप है वो प्रवेश करेगी, बाकी ऊपर रहेगी अभी कुछ काल तक, यानी जो नई अभाव किया था ना, अंतर किया था, उसमें नई निषेक रचना हो जाएगी, तो वहां एक कोई प्रकृति उदयावली में आ जाएगी, तो वहां भी 26 का होगा, यानी किसी के मिथ्यात्व की आएगी, 26 का ही है, परंतु ये सब ऑप्शंस अलग अलग बताए, तो प्रकृतियां अलग अलग होगी हर जगह, किसी के मिथ्यात्व की होगी, किसी के सम्यक मिथ्यात्व की होगी, किसी के सम्यक प्रकृति की होगी। और पांचवा पॉइंट हमने देखा था कि सासाधन सम्यक दृष्टि जब मिथ्यात्व में आता है तब भी, क्योंकि सासाधन का काल क्या है, औपशमिक का काल है, सासाधन का काल औपशमिक सम्यक्त्व का काल है, तीनों उपशमित है। जब वह जीव मिथ्यात्व में आता है, यानी मिथ्यात्व का उदयावली में प्रवेश होता है, अकेले का, सम्यक सम्यक मिथ्यात्व का अभी नहीं होगा, बाद में होगा, इसलिए उसको भी ऐसे इस तरह से पांच पद्धति से उन्होंने बता दिया। कितने भी काल क्यों न हो, एक समय हो या छह अवली हो, सासादन का काल तो उपशम सम्यक्त्व का काल है, यानी तीनों ही उपशमित ही है, दर्शन मुनि तीनों ही उपशमित है। अब जो उपशम का काल समाप्त तो हुआ तब वो जाके मिथ्यात्व में आया है, यानी जो सासादन का काल है एक समय से लेकर छह अवली तक, वो उपशम सम्यक्त्व के काल में ही वो गर्भित है, क्योंकि वह अनंतानुबंधी का उदय शुरू हुआ था। अब यहां तक तो हमने कल पढ़ा था 114 पृष्ठ पर, अभी नीचे का हम पढ़ेंगे सूत्र। पणुविषम पयड़ियो उदयावलियम पविसंति दंशनतियम मुत्तुण दर्शन मोनिय त्रिक को छोड़कर 25 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है। उपशम सम्यक्त के काल में भी विघटित होगा, क्योंकि यानी उपशम सम्यक्त के काल में भी होगा और सासादन के काल में भी होगा, क्योंकि कषाय और नौ कषायों की प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश कहीं पर भी उपलब्ध होता है, वह स्थान किसके होता है, ऐसी आशंका होने पर आगे का सूत्र कहते हैं। इत्ते के ऊपर रफा रह गया है, कहते हैं। अब यहाँ हम सूत्र पढ़ेंगे। ये 25 वाला स्थान किसके होता है? अनंतानुबंधिनम अविसंयुक्तस्य वसंतदंशमोहनीयस्य। क्या कहते हैं? केवल उपशम सम्यक्ति नहीं कहा, उपशम सम्यक् दृष्टि जीव विसंयोजना करता है तो उसके अनंतानुबंधी की सत्ता ही नहीं है, तो वो कितने का प्रवेशक होगा? 21 का। इसलिए कंडीशन डाल दी, उपशम सम्यक्ति और जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना नहीं की है उसकी सत्ता भी चाहिए। उपशम सम्यक्त्व के काल में अनंतानुबंधी एक समय ऊपर पड़ा है, उदय के समय से एक समय ऊपर वो है, वहां उसकी सत्ता। उदय में आते आते अन्य रूप होकर उदय में आता है, जिसको हम अप्रशस्त उपशम कहते हैं या सदवस्था रूप उपशम कहते हैं। दर्शन मुनि में ऐसा उपशम नहीं हुआ है। दर्शन मुनि में कैसा हुआ है? हाँ, प्रशस्त कहो या अंतर वाला उपशम, वहां उसका अंतर चल रहा है। और जो वेदक समय दृष्टि है उसके जो है उसको मिथ्यात्व का कैसा उपशम चलता है? हाँ, वहां अप्रशस्त, वो भी एक समय ऊपर पड़ा है। ख्याल में आई बात? अभी हम आगे बढ़ेंगे, हिंदी में अर्थ पढ़ेंगे। यह स्थान, यह स्थान यानी कौन सा स्थान मंजू बहन? 25 वाला। हाँ, यह स्थान कोई बात नहीं, जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है किंतु दर्शन मुनि का उपशम किया है, ऐसे उपशम समय दृष्टि के होता है। ये तो आसान है और विषय भी बहुत आसान चल रहा है। किसमें? एक समय ऊपर पड़ा है ना, उदय के समय में वो अन्य रूप होकर उदय में आ रहा है, उदयावली में तो है। हाँ, यानी उदय रूप जो निषेक है, उदय का समय तो अनंतानुबंधी का उदय नहीं है, क्योंकि सम्यक तो चल रहा है। उपशम सम्यक तो हो या वेदक सम्यक तो हो, अनंतानुबंधी तो वहां है, पर यानी ये अनंतानुबंधी की बात करेंगे हम, ये अनंतानुबंधी के निषेक। उदय रूप होते होते क्या होता है? ये उदय वाला समय, यहाँ अन्य तीन कषाय चौकड़ी का उदय चल रहा है, तो उदय में आते हुए अन्य रूप होकर उदय में आता है, इसको कहा एक समय ऊपर पड़ा है। अच्छा, अभी उसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं नीचे। क्योंकि जिसने दर्शन मुनि की उपशमना की है ऐसे जीव के तीन दर्शन मुनियों को छोड़कर चारित्र मुनि की 25 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश बिना रुकावट के उपलब्ध होता है। ये बिना बाद में पढ़ना, नहीं तो प्रवेश बिना ऐसा नहीं कहें। हाँ, यहाँ पर जिसने अनंतानुबंधियों की विसंयोजना नहीं की है, यह विशेषण जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है उसके 25 प्राकृतिक प्रवेश स्थान असंभव है, यह निष्कर्ष फलित करने के लिए दिया है। क्योंकि विसंयोजना में उसकी सत्ता ही नहीं है, तो वहाँ चारित्र मुनि की 21 ही बाकी रहेगी। तो दर्शन मुनि तो उपशमित है और चारित्र ये अनंतानुबंधी तो विसंयोजित हो गया, तो वहाँ तो 21 प्रवेश करेगी। क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि के द्वारा अनंतानुबंधियों की विसंयोजना कर देने पर 21 प्राकृतिक प्रवेश स्थान की उत्पत्ति देखी जाती है। नत्थि अन्नस्य कस्सवि, यह स्थान अन्य किसी के नहीं होता। क्योंकि वो हमने 26 वाला देखा था, उसमें 5 अलग अलग ऑप्शंस बताए थे, तो यहाँ तो एकमात्र यही होगा जिसके ये 25 प्राकृतिक स्थान होगा, अन्य किसी के नहीं होता। उक्त जीव को छोड़कर अन्य किसी जीव के यह प्रवेश स्थान नहीं होता, क्योंकि जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना नहीं की है ऐसे उपशम सम्यक दृष्टि को छोड़कर अन्यत्र 25 प्राकृतिक प्रवेश स्थान असंभव है। यानी ये स्पेसिफिक इसी जीव के होता है, अन्य किसी के नहीं होता। अब आगे का सूत्र ऊपर पढ़ा था, नथ्य अन्नस्य कस्सवि। 24 पयडियो उदयावलियम पविसन्ति अनंतानुबंधिनो वच्च। अनंतानुबंधियों को वह हुआ है, अनंतानुबंधियों को छोड़कर 24 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती हैं। यह कौन सा सम्यक दृष्टि होगा? वेदक होगा, क्योंकि औपशमिक वाले तो उपशमित है, वो तो प्रवेश नहीं करती है, परंतु जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि लेना। एक अवली काल तक, परंतु वो अनंतानुबंधी का उसमें उदयावली में प्रवेश नहीं है। बंधावली तो उसकी, बंधावली के बाद उसमें उदीरणा से हो जाएगा, नया बंदर होगा उसमें। मिथ्या दृष्टि जीव के भी होगा, समय मिथ्या दृष्टि के भी होगा। 24 की सत्ता वाला है, इतना ही लेना है। क्योंकि बाकी तो है, प्रवेश तो हो चुके हैं। क्योंकि 24 प्रकृतियों की सत्ता वाले वेदक सम्यक दृष्टि और सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के यह स्थान उपलब्ध होता है। ये तो सत्ता ही 24 की है। विसंयोजना पूर्वक संयोग के प्रथम समय में, संयोग का प्रथम समय तो सत्ता कितनी हो गई? हाँ लक्ष्मी, 28 संयोग हो गए ना, नया बंद भी हुआ है, सत्ता 28 की हुई है। परंतु नया बंद है तो अभी उसकी आबादा चल रही है आवली काल तक। आवली क्यों ली? क्योंकि बंधावली के बाद उदीरणा के द्वारा उसका उदय शुरू हो जाएगा। परंतु बंध तो उसी समय शुरू हुआ था जिस समय मिथ्यात्व में आया है। सत्ता तो 28 की है, फिर भी उदय नहीं है अनंतानुबंधी एक अवली काल तक। एक अवली पश्चात उदीरणा के द्वारा वहां निषेक रचना होती है और उसका उदय भी शुरू हो जाता है। 28 की सत्ता, 24 की सत्ता प्रवेश करती है, क्योंकि उसकी उदयावली कैसी होगी? देखो 24 की सत्ता करके वो मिथ्यात्व में आया है। मिथ्यात्व में आया है तो बंध नया होगा कि नहीं होगा? 28 की हो जाएगी, 24 की सत्ता वाला दो ही के लिए लगाया है, वेदक और मिथ्या दृष्टि के लिए वहां सत्ता की बात नहीं की। सत्ता की बात वहां लिखा क्या? 24 की सत्ता है, संयोग हुआ उसका अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी वहां बंद गया, मिथ्यात्व में आता है तो मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का बंद हो चुका, पहले समय से ही हो रहा है। तो सत्ता 28 के होने पर भी एक आवली तक उदय नहीं होगा, अभी जो नया बंद होगा, तो वहां नया बंद है तो अंत कोड़ा कोड़ी की भी ले लेते हैं तो वहां कुछ ना कुछ वहां अंतर्मूर्त तो वहां पड़ेगा कि नहीं उसका आबाधा। परंतु आबाधा इतनी होने पर भी आवली के बाद उदीर ना होकर वहां नीचे आते हैं। देखो, विसंयोजना पूर्वक संयोग के प्रथम समय में विद्यमान मिथ्या दृष्टि जीव के भी इस प्रवेश स्थान, कौन सा प्रवेश स्थान? 24 का, क्योंकि 24 का ही प्रवेश है अभी उसका। अनंतानुबंधी का उदयावली में प्रवेश नहीं है क्योंकि उसकी वो बंधावली है, अभी उसकी उदयावली बंधावली के बाद चालू हो जाएंगे। एक आवली के पश्चात वो कितने का प्रवेशक होगा बोलो अभी आप? एक आवली के बाद वो कितने का प्रवेशक होगा? 28 का, एक आवली तक 24 का। परंतु सत्ता 28 की हो गई वहां पर, बंध बंध बंधा है ना, उसी समय से सत्ता बढ़ गई उसकी। बंद है उदय नहीं है। देखो, मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व के उदय में बंधने वाली प्रकृति है, जो कहते ना मिथ्यात्व बंध का कारण नहीं है, उसके लिए ये बड़ी दलील है। बीच में आया था ना वो मिथ्यात्व अकिंचित करे, उससे नहीं बंद होता। अरे परंतु यह तो मिथ्यात्व से ही अनंतानुबंधी का बंद हो रहा है, वहां तो अनंतानुबंधी था ही नहीं सत्ता में। मिथ्यात्व में आने के कारण, मिथ्यात्व के कारण अनंतानुबंधी का भी बंद हो रहा है, उदय नहीं है। क्यों नहीं है? बंधावली तक, आवली काल तक उसको नीचे नहीं आएगा उदय, आबाधा काल में। आबाधा कितना भी क्यों ना हो, 7000 वर्ष की भी आबाधा मिथ्यात्व में होती है, आवली काल के बाद उसकी उदीरना शुरू हो जाती है, कुछ परमाणु उस निषेक में से नीचे आते ही है, उदय में आते हैं। बिल्कुल, एक आवली में उदय शुरू हो जाता है। पुराने के साथ साथ 70 वाले ही आएंगे। हाँ, नया बांधा है। हाँ, और उसका उदय भी शुरू हो जाएगा, मिथ्यात्व का नया बंधे हुए के, एक आवली पूर्व बंधे हुए मिथ्यात्व का उदय शुरू हो जाता है। प्रत्येक कर्म में ऐसा होता है, उदय शुरू होते ना, पूरा निषेक नहीं नीचे आता है, परंतु उसमें से प्रत्येक निषेक में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते ही रहते हैं, ये तो निरंतर चलता है। जो जो उदय रूप प्रकृति है उसमें, वो तो उदय रूप आबाधा है और ये उदीर्णा की आबाधा है। सात हजार वर्ष की आबादा है वो तो निषेक रचना बंद के समय की बात हुई, आवली के बाद उदीर्णा के द्वारा, आवली काल के पश्चात तो उसकी उदीर्णा रूप उदय शुरू हो जाता है सभी का, सभी में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते ही रहते हैं। बिल्कुल, 7000 वर्ष की आबादा छोड़कर ऊपर के सभी निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु बिल्कुल उदय के समय से उसकी रचना होती है। निषेक नहीं है, मगर नए उसमें, नए वहाँ जो पुराने निषेक थे उसमें से ऊपर से आकर परमाणु उसमें मिट जाते हैं और वो उदय शुरू हो जाता है उसका। बिल्कुल, यानी 7000 वर्षों में बीच में जितने निषेक छूटे थे ना आबादा में, बंधावली बीत जाने पर उन सभी में, सभी निषेकों में थोड़ा थोड़ा माल पहुंच जाता है। ये उदीर्णा तो उदीर्णा ने ऊपर से धूल थोड़ी थोड़ी नीचे झटक के नीचे आती रहती है। हमने देखा ना सभी कर्मों में उदीर्णा होती है, आयु में भी, आबाधा में नहीं होगी, परंतु उदीर उसका देखो अपना 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 रूल क्या है, उदय होने पर उदीर ना होती है। आयु की उदय ही नहीं आपाधा में, अन्य आयु का उदय है तो उसके लिए उससे में कुछ आकर मिलेगा ऐसा नहीं है। मिथ्यात्व कर्म में कैसा है, अन्य पूर्व में बंधा हुआ मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और ये अभी बंधे हुए आवली के बाद उसमें आकर मिल सकते। आयु के तो ऐसा नहीं है, भले पूर्व की और अभी की मनुष्य ने मनुष्य आयु भी बांधी हो तो वर्तमान आयु में ऊपर के बद्यमान आयु के परमाणु आके मिल नहीं सकते, उसके आबादा बाद ही उदय होगा। यानी उसकी जितनी स्थिति बंदी है उतना ही उदय काल है। आयु में कुछ विशेषता है तो आबादा पूर्ण होते ही उसका यानी यहाँ मरण होने के बाद ही उसका उदय शुरू होगा। और उदय शुरू है तो ऊपर के निषेकों में से थोड़े थोड़े परमाणु नीचे आते ही रहते हैं, ऐसी उदीर्णा चलती ही रहती है। कब? आयु में एक आवली पूर्ण बाकी रहे तब तक, क्योंकि आवली ही बाकी रहे तो ऊपर कहाँ से आएगी नीचे निषेक। आवली बाकी है ना, वो उदयावली रूप रहेगी, अभी उतना ही उसका जन्म अभी आयु शेष है, तभी उसमें ऊपर से नीचे आने का कार्य नहीं। आयु की भी नहीं होती ऊपर, आयु की भी और वेदनी की भी, नॉट ओनली असाता ताता भी, हाँ वेदनी की उदीर्णा नहीं होती ऊपर। एक एक लाइन में आएगी, क्योंकि अभी उसमें नीचे आने का कार्य नहीं होगा। अपकर्षण आदि जो है वो उदयावली के ऊपर के नीचे आते थे, क्योंकि हर एक में उतना अतिस्थापना भी है ना, इतना छोड़कर नीचे आते हैं। मान लेते 16 समय की आवली है तो 17वें निषेक के परमाणु नीचे कहाँ तक जाएंगे? तो 16 में से हमने एक कम किया था 15, उसका 1/3 5, उसमें एक मिला दो 6, तो नीचे के 6 निषेकों में वो 17 नंबर का निषेक का कुछ परमाणु उसमें आएंगे। दैट इज द लास्ट टाइम उसकी वो अपकर्षण कहो उसी को उदीर्णा कहो होती है, उसके बाद नहीं होगी। यानी अभी 16 ही निषेक बाकी है, यानी आवली प्रमाण ही बाकी है, तो अभी 16 वैसे नीचे आ जाए ऐसा नहीं होगा। ना नीचे के 5 में 6 में आएगा, ऊपर के 10 में नहीं जाएगा। 17वें निषेक के परमाणु नीचे के 6 निषेकों में आएंगे, ऊपर के 10 में नहीं जाएंगे। तो 10 को अतिस्थापना कहा है और नीचे के 6 को निक्षेप कहा है। ये जो उदाहरण है ना, अभी राजमल्ली जी ने जो एक पुस्तक भेजी थी सम्यक लब्धि, उसमें इसी को गुण श्रेणी के उदाहरण के रूप में लिखा है। और फिर एक पत्र आया है, राजमल जी है भोपाल के, आप जानते होंगे, वो बहुत यानी सीनियर है, ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते, काफी करनायोग के अभ्यास है। तो मोक्षमार्ग प्रकाशक में क्या कथन है, लाइन लाइन से उन्होंने लिखा, बहुत लंबा चौड़ा पत्र है। और फिर वो सम्यक तो लब्धि सहजानंद वर्णी ने लिखी, उसमें ये दोनों में जो कोई डिफरेंस पड़ रहा है तो इसका अर्थ क्या, उसका क्या अर्थ है, कथन में डिफरेंस है। तो बहुत लंबा चौड़ा उनका पत्र आया था, तो उसमें भी ऐसा ही, वो तो जो सम्यक तो लब्धि नाम की पुस्तक है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है ना, लब्धि सर के कुछ कोटेशंस दिए डिक्टो, परंतु कभी कभी हम कैसे पढ़ते हैं, ये भी ऐसा है परंतु बाद में जाकर कहें नवरी विशेष है, परंतु ये विशेषता है। पहले कहेंगे ना कि बहुभूमि में वो सारे वो जो होते, फिर कहेंगे ना तिर्यंचनी को नहीं होगा या मनुष्यनी को नहीं होगा, ये बाद में आगे जाके कथन करते हैं। तो पहले वाला कथन ले लिया है, बाद का कथन छोड़ दिया है। कौन सा कथन? मोक्षमार्ग प्रकाशक में कहा है कि अपूर्वकरण जो है, प्रथमोपशम सम्यक के काल में जो अपूर्वकरण होता है, वहां अपूर्वकरण के काल में गुणश्रेणी नहीं है, सॉरी गुण संक्रमण नहीं होता। अन्यत्र जहां जहां 3 परिणाम है, करण परिणाम, अपूर्वकरण से ये सब शुरू हो जाता है, गुणश्रेणी, गुण संक्रमण, स्थिति कांडक, अनुभाग कांडक हो गए। तो वहां लिखा है प्रथमोपशम सम्यक्त्व के काल में यहां पर नहीं होता है, आगे चलकर होता है। और वो जो सम्यक्त्व लब्धि में वहां तो लिखा है अपूर्वकरण के कुछ समय बाद ये शुरू हो जाता है, अपूर्वकरण में ही शुरू हो जाता है। तो तो कहते वहां तो तीन उन्होंने एक्सेप्ट किए, उन्होंने तो चार कार्य बताए ऐसा कैसे। तो क्या कहें, थोड़ा कुछ लेते हैं ना बीच वाला ही कुछ कथन, और आगे चलकर उसका क्या है यानी रेफरेंस वो नहीं लेते हैं, तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं विरोध है। और वो पुस्तक जो छोटी एक पुस्तक सम्यक तलब्धि नाम की, उन्होंने मुझे 4 साल पहले दी थी, पंचलब्धि लिखी ना उसके भी पहले दी थी, वो अन्ना जी ने या इन्होंने किसी ने भेजी थी, तो उनको वो याद थी, वो उसके कोटेशन बताए, इसमें ये पान नंबर में ये लिखा है, ये लिखा है, ये लिखा है, फिर वो ढूंढ के निकाली और फिर उसका लिखा। उत्तर ही 4 पुरुष के पुआ है। किसका? अपूर्वकरण में यह है कि प्रथमोक्षम में सम्यक के काल में गुण संक्रमण नहीं होता। हमने अभी संक्रमण हमने अभी इतना पढ़ा ना जयधवला में, तो संक्रमण हमने क्या देखा था, मिथ्यात्व का और सम्यक मिथ्यात्व का संक्रमण कब होता है, गुण संक्रमण शुरू के एक अंतर्मूर्त काल में, सम्यक तो होने पर, वो भी मिथ्यात्व का पहले समय में और सम्यक मिथ्यात्व का दूसरे समय में, क्योंकि वो प्रकृति तैयार होती है फिर उसका गुण संक्रमण चालू हो जाता है। और बाद में कब होगा, जब क्षपणा होगी तभी होगा। अनंतानुबंधी का गुण संक्रमण उसके विसंयोजना के काल में होता है, और अन्य प्रकृतियों का उस श्रेणी में होता है, नीचे कहीं नहीं होता है। ये तो बात हमने देखी। बाकी अन्य अन्य संक्रमण होते हैं, कहीं अधप्रवृत्त होते हैं, किसी के विद्यात होते हैं, वो तो अलग अलग संक्रमण होते रहते हैं। परंतु ये जो बात है ना कि गुण संक्रमण अपूर्वकरण से नहीं होता है, अपूर्वकरण में गुण श्रेणी हुई, अनिवृत्तिकरण में भी गुण श्रेणी हुई, गुण श्रेणी ने वो रचना और उसकी निर्जरा चालू हो गई, जब सम्यक तो हो गया पहला समय, तब से जाके गुण संक्रमण चालू हो गया और वो अंतर्मूर्त तक होगा। हाँ, कहीं पर प्रथमोक्षम सम्यक तो अपूर्वकरण के काल में नहीं होता, परंतु जब अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है वहां जो अपूर्वकरण है वहां उसका गुण संक्रमण चालू होता है, क्षपणा के काल में जब अपूर्वकरण होता है वहां से उसका गुण संक्रमण चालू होता है, यही एक्सेप्शन है। प्रथमोक्षम सम्यक के काल में जब अपूर्वकरण होता है उस समय उसका गुण संक्रमण नाम का कार्य वहां नहीं होता है, अन्यत्र होता है, और वहां भी अन्य कर्मों में ऐसा कोई संक्रमण नहीं हो रहा है। कहेंगे मिथ्यात्व का नहीं होता है, लोगों का क्या कहना है, गुण संक्रमण कहते हैं तो असाता साता रूप हो जाती है, वो भी यहां नहीं होती है। यहां होगा तो भी उसका कौन सा संक्रमण होगा, अधप्रवृत्त होगा, क्योंकि जब तक बंद है तब तक। तो ये पता नहीं, नहीं ये भी हमने अभी जो जयधवला में इतना अभ्यास नहीं, नहीं। सम्यक ज्ञान चंद्रिका भी एक बार पढ़ने से थोड़े, परंतु उसमें उन्होंने कहीं भी ऐसी भूल नहीं की। पंडित जी ने भी धवला जयधवला पढ़ी नहीं थी, फिर भी कितना उनका सही शब्द है जो कुछ लिखा है। तो मूल नेमिचंद्र आचार्य की जो ग्रंथ थे संस्कृत उसी के अनुसार लिखे हैं, परंतु कहीं भी ऐसी मिस्टेक नहीं है उनकी। ख्याल में आते ना, उनका अभ्यास बहुत गहरा अभ्यास था, क्योंकि हमने देखा कितने जयधवला जयधवला के कितने जो डिटेल देखते हैं तो सम्यक ज्ञान चंद्रिका में वो सब मिले थे। अभी जब हमने पहली बार पढ़ा तो इतना गौर नहीं किया था, चलो क्या ये बहुत वही की वही की वही की बात है ऐसे, पर अभी उसको पर गौर से पढ़ते तो ख्याल में आता है कि ये कितने सूक्ष्मता से उन्होंने लिखा है। ये 23 मार्गणा वगैरह पुद्गल की वो तो तभी तो पढ़े थे ना, इतना ख्याल नहीं आया था जब हमने एक पूरी पुस्तक वो 23 मार्गणा पर पढ़ी धवला वैली, तो ख्याल आया कि वहां कितनी गहराई से बात लिखी है। अरे कौन, एक सोनागिरी का है कोई, क्या मुझे याद नहीं, सोनागिरी में कोई एक पंडित है, इन्हें अपने इधर का मुमुक्षु का नहीं है, वो कहते हैं टोडल मन जी के उन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इतनी भूल है करके उन्होंने कुछ निकाले पुस्तक छापी। कहते छठे गुण स्थान में वहाँ असाता वेदिनी अरति शोक वगैरह का बंद होता है और आप कहते हैं अशुभ उपयोग होता ही नहीं, तो ये कैसा हो सकता है? तो उनको ये भी मालूम नहीं है कि शुभ उपयोग क्या है अशुभ उपयोग क्या है। तो पाप प्रकृति का बंद होना यानी अशुभ उपयोग होना चाहिए ऐसे थोड़ी है। ज्ञानावरण का बंद तो दसवें तक है। और ये तो संकलेश विशुद्धि से सहज होता है, ऐसी कोई बात नहीं कि वो पाप उपयोग जिसको कहते ना अशुभ उपयोग, अशुभ उपयोग तो चरणानियोग की टर्मिनोलॉजी है, जिसकी जो स्थूल हमें बुद्धिगोचर पाप नहीं होते उस अपेक्षा से वो बात बताई। तो कोई बिल्कुल दसवें तक बनती है, ज्ञानावरण दसवें तक बन रहा है, दर्शनावरण बन रहा है, अंतराय बन रहा है। ये हम बिना गए थे ना तब वहां से फोन आया था, उनके किसी शिष्य ने लगा दिया था मोबाइल पर और ये सब हमको सुना रहा था। ये नहीं हम किसी से ज्यादा सियाने ऐसे दिखाने कि उनको जरा कमी दिखाए तो हम उनसे जरा ग्रेट हो गए ऐसा लगता है ना ये हमको। इसमें बोलना
पहले सीजन उन्होंने नहीं किया है तो उन्होंने किया है। यानी महावीर भगवान की जन्म जयंती सब है तो बाकी लोगों को अपने को समझ में आता है कि इसको कितने मालूम आते हैं। सभी सर्वज्ञ हैं, एक जैसे हैं और उनको ये घर छाते ऐसा इनका चल रहा है।
देखें नहीं ठीक है, इन्होंने तो बस यानी उनका तो जिसको कहते हैं ना प्रश्न पूछने के पीछे का उनका उद्देश्य ऐसा नहीं कि कहीं गलती नहीं उनका तो, क्योंकि इतना सूक्ष्म अभ्यास कर रहे कंपेरिटिव जिसको कहेंगे यहाँ ऐसा लिखा है यहाँ ऐसा लिखा है और वो कितने एक एक लाइन का कितना अभ्यास किया तभी तो उनको ये ख्याल में आई ना कि ये बात यहाँ ऐसी लिखी है वहाँ ऐसी हम क्या समझें। उन्होंने ऐसा भी पूछा है कि ऐसे ऐसे ये जो प्ररूपणा हुई तो हम क्या समझे इसमें, आगम के आधार से बताओ, क्योंकि उन्होंने इतना तक लिखा है कि विद्वान अभी हर एक अपने अपने चिंतन से बता रहे इसमें हम क्या समझे। अभी उन्होंने विद्वानों के नाम सहित बता दिया, अभी क्या करें हम
ऐसा। तो
राजमल जी का काफी अच्छा नाम है। नहीं नहीं आगम के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है पहले जो हमने प्रवचन सुने तो वैसा हम भी कथन करते थे ना, पहले 48 मिनट आत्मा में स्थिर होना, ये 6 महीने में एक ही बार होता है, एक ही बार होता है ऐसा, एक ही बार होता है ऐसा क्यों लगा रहे, ये तो गलत है। यानी अपनी ओर से अतिशयोक्ति पूर्वक कुछ एम्फोसाइज करते हैं और ये आगम से विरुद्ध हो जाती बात, ये नहीं होनी चाहिए, ये बात कहना चाहिए। देखो देखो अभी ठीक है, अभ्यास किया है, ट्रांसलेशन तो अभी अभी किया है दो साल में। नहीं कोई प्रश्न पूछना था और उसमें सोचना हो जाता है अधिक उस गहराई तक, फिर वो याद आता है सारा। ये सामने अभी इतना गहन प्रश्न पूछा तो उसको आगम का आधार चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने निकाल के देखा है, परंतु वो तो याद आ गए ना उतना कि हमने पढ़ा था इस तरह से। हाँ देखो देखो अभी हम यहाँ अनंतानुबंध 24 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश किसके होता है, तो कहते हैं जिसने अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है ऐसा वेदक सम्यक दृष्टि, ऐसा सम्यक मिथ्या दृष्टि, ये तो 24 की सत्ता वाला हुआ और 28 की सत्ता वाला है, पर कौन सा विसंयोजना पूर्वक जो इसने संयोजना की है, तो एक आवली काल तक उसका अनंतानुबंधी का प्रवेश ही नहीं है। प्रवेश कैसा होगा, क्योंकि आवली के बाद ही वहां निर्शिक रचना तैयार हो जाएगी, तो एक आवली तक कोई भी निषेक नहीं है, उदया बंदावली ही चल रही है उसकी, तो वहां भी उसके 24 का ही उदय, उदय नहीं क्या कहेंगे उसको, प्रवेश, 24 का प्रवेश। अब आगे का सूत्र, तेवीसम पयड़ियो उदयावलियम पविसंती मिच्छत्ते खविदे। मिथ्यात्व का क्षय होने पर 23 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, पूरा क्षय अभी वो उदयावली में उच्चिष्टावली वगैरह वो भी नष्ट हो गई, तभी की बात है। उच्चिष्टावली समझते किसको कहना, मिथ्यात्व का गुण संक्रमण होकर सब समय मिथ्यात्व रूप हो गए, और उदयावली में जितने निषेक गए थे एक समय उदय का छोड़ करके, क्योंकि उदय का समय में वो सम्यक प्रकृति रूप हो जाती है, तो उदयावली में जो निषेक बाकी बचे हैं, जिसका उदय नहीं होने वाला है परंतु एक एक निषेक टर्न होकर नष्ट होने वाला है, उसको कहेंगे उच्चिष्ठावली। प्रवेश है, हाँ उच्चिष्ट है ना, जब हम कहते ना खाने के बाद नीचे क्या रखता है, रहता है थाली में, उच्चिष्ट रहता है, वैसे अभी ये सब निकल गया, क्षय हो चुका है, सत्ता में अभी इतना ही बाकी है, सत्ता में इतना ही बचता है, उसको कहते उच्चिष्ठावली। क्षय होते होते सत्ता में एक आवली मात्र निषेक रहते हैं, अभी इसका उदय नहीं है, एक समय कम आवली इतने रहेंगे, तो उसको कहेंगे उच्चिष्ठावली। वो भी नष्ट हो जाने पर, यानी उच्चिष्ठावली वाले तो उसमें प्रवेश है, जो वहां ऑलरेडी प्रविष्ट है, वो भी नष्ट हो जाएगा, यानी मिथ्यात्व का पूरा क्षय हो गया है। तो क्षय हो गया तो कितने प्रवेश करेंगे अभी, अनंतानुबंधी तो पहले ही नष्ट हो गया, अनंतानुबंधी के पहले विसंयोजना होती है, बाद में मिथ्यात्व का क्षय हो चुका है, तो अभी उदयावली में प्रवेश करने वाले कितने हैं, तो 23 है, चारित्र मुनि की 21, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, यही कहते हैं। मिथ्यात्व का क्षय होने पर 23 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, 24 प्रकृतियों के प्रवेशक उसी वेदक सम्यक दृष्टि के द्वारा। हाँ, आपका प्रश्न है प्रतिग्रह स्थान और प्रवेश स्थान में क्या अंतर है। प्रतिग्रह स्थान हम उसको कहते हैं संक्रमण जब होता है ना, तो संक्रमण जिस प्रकृतियों में संक्रमण होता है उसको कहेंगे प्रतिग्रह स्थान, परंतु ये प्रतिग्रह स्थान में कंडीशन क्या है, वो बंधने वाली होनी चाहिए, बंद होना चाहिए, बंधने वाली प्रकृतियों प्रतिग्रह रूप होती है,
उदय वाली जो है
उदय होती है नहीं होती उसका नहीं, अभी जो मिथ्यात्व का क्षय हो रहा है, अभी हो नहीं रहा, हुआ नहीं है, अनंतानुबंधी का विसंयोजन हो चुका है, तो वो वेदक सम्यक दृष्टि है, उदय किसका चल रहा है, सम्यक प्रकृति का, फिर भी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व उदयावली में प्रवेश कर रही कि नहीं कर रही, ख्याल में है ना, और उसको वो प्रतिग्रह रूप भी नहीं है, प्रतिग्रह नहीं कहेंगे क्योंकि सम्यक प्रकृति का उद्वेलना तो मिथ्यात्व में होगी, यहाँ तो उल्टा संक्रमण चल रहा है, प्रतिग्रह तो सम्यक प्रकृति रूप से होकर हो रहा है, ख्याल में है, उसमें आती है परंतु आती है मात्र उदयावली में नहीं आती, ऊपर भी जाती है, सर्वत्र उसका प्रतिग्रह में, केवल उदयावली में प्रवेश वाली बात नहीं है, पूरे सत्ता में जितने हैं उसमें प्रवेश उसका, यानी उसमें संक्रमित हो रहे हैं, वो संक्रमण में, प्रतिग्रह जो शब्द आता है वो संक्रमण में आता है। अभी हम 116 पृष्ठ पर आए, पेज पलट गया आपका, 24 प्रकृतियों के प्रवेशक उसी वेदक सम्यक दृष्टि के द्वारा दर्शन मोहनीय करना, गोहनीय हुआ, दर्शन मोहनीय की क्षपणा के लिए उद्यत होकर मिथ्यात्व का क्षय कर देने पर 21 कषाय सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व, ये 23 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है। ये बात ख्याल में आई, क्योंकि वहां पर अन्य प्रकार संभव नहीं है, वो कहते बाविसम पयड़ियो उदयावलियम पविसंती सम्मा मिच्छत्ते खविदे। सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने पर 22 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती हैं। यानी सम्यक मिथ्यात्व का क्षय हो गया तो उसको क्या कहेंगे? अभी कृतकृत्य वेदक नाम नहीं देंगे। जब मिथ्यात्व का क्षय होता है तो सम्यक प्रकृति की सत्ता 8 वर्ष की बाकी है। उसमें भी बहुत सारे स्थिति खंडक घात होते होते जब अंतर्मूर्त रह जाएगा, यानी जब वो स्थिति खंडक घात समाप्त तो हो जाएंगे तब उसको कहेंगे कृतकृत्य वेदक, तब तक नहीं कहेंगे। परंतु वो सारा प्रवेश कर रहे हैं ना उदयावली, तो वहां भी उसको कितने का प्रवेशक कहेंगे? 22 का। 21 चारित्र मुनि है और ये सम्यक प्रकृति भी उदयावली में प्रवेश कर रही है। तेईस प्रकृतियों के प्रवेशक उसी जीव के, ये हमने पढ़ा ना, हाँ, समय मिथ्यात्व का क्षय होने पर 22 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती हैं। 23 प्रकृतियों के प्रवेशक उसी जीव के द्वारा, जिसको हमने ऊपर देखा था मिथ्यात्व का क्षय हुआ था तो 23 का प्रवेशक था वही जीव, वहां से अंतर्मूर्त बिताकर सम्यक मिथ्यात्व का क्षय करने पर सम्यक्त्व के साथ चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश सुव्यक्त उपलब्ध होता है। यानी वो तो जाहिर है, स्पष्ट है, व्यक्त है। सूत्रकार ने यह एक प्रकार निर्दिष्ट किया है, इसलिए प्रकारांतर से भी 22 प्रकृतियों का विषयभूत स्थान संभव है यह जान लेना चाहिए, क्योंकि अनंतानुबंधियों की विषय योजना कर 21 प्रकृतियों के प्रवेशक भाव से अवस्थित उपशम सम्यक दृष्टि जीव के मिथ्यात्व, वेदक सम्यक्त्व, सम्यक मिथ्यात्व और सासादन सम्यक्त्व, इनमें से किसी एक गुणस्थान को प्राप्त होने के प्रथम समय में प्रकृत स्थान के संभव होने का नियम देखा जाता है। प्रथम समय में, क्योंकि बाद में तो उदयावली में रचना हो जाती है। क्या कहना चाहते हैं? देखो, कौन सा जीव लिया? 22 वाले के लिए दूसरा, एक अनंतानुबंधी की विषय योजना करने वाला उपशम सम्यक दृष्टि, यानी जिसकी अनंतानुबंधी की सत्ता नहीं है, 24 की सत्ता है, उपशम सम्यक दृष्टि है, तो कितने का प्रवेशक होगा उस समय? वहां क्या बताने में पूछे, मैंने क्या पूछा? औपशमिक सम्यक दृष्टि है, अनंतानुबंधी की विषय योजना कर दी है, हाँ? कितने का प्रवेशक है? 21 का है, 21 का है। अब उसका उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ तो तीन में से एक प्रकृति उदय रूप होगी, यानी उदय में प्रवेश करेगी, उदयावली में प्रवेश करेगी, तो 22 का हो जाएगा। यानी उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर कौन सा जीव लिया? जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है, ऐसे जीव के उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ। यदि वो मिथ्यात्व का उदय होता है तो मिथ्यात्व अकेला ही उदयावली में प्रवेश करता है तो 22 का हो जाएगा। या तीसरे गुणस्थान में आया है वो उपशम सम्यक्त्व का काल पूरा होने पर तो भी उसके 22 का है। या वेदक सम्यक दृष्टि हुआ है वो विषय योजना के बाद तो भी उसके 22 का उदयावली में प्रवेश है। या उपशम सम्यक्त्व के काल में सासादन में आया, तो आप कहेंगे सासादन में तो अनंतानुबंधी के चारों का उदय होगा, चारों का तो होता नहीं है। जो उदय रूप प्रकृति होगी, क्रोध या मान या माया, वो उदय के समय से लेकर उसकी नई रचना होगी आवली काल प्रमाण, बाकी अभी उदय के ऊपर है इसलिए पहले समय में घटित हुआ, बाद में वो नीचे आएंगे उसकी रचना होगी उसकी बात नहीं है। तो वहां वो जीव भी 22 का प्रवेशक है। ख्याल में ना, 5 अलग अलग लिए। पहले में, पहले सूत्र में कौन सा बताया? सम्यक मिथ्यात्व का क्षय होने पर। फिर जो जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना की है ऐसा उपशम सम्यक दृष्टि, या तो मिथ्यात्व में आएगा या सम्यक मिथ्यात्व में आएगा, या तो वेदक होगा या सासाधन होगा, तो उसके पहले समय 22 का प्रवेश है। सम्यक्त्व का ही का उसमें प्रवेश है, वो आवली के ऊपर पड़े हैं, वो क्रम से नीचे आते चले जाए। हाँ वो उसका काल में ले लेंगे, कितना काल है वो काल की बात कहाँ आई है, पहले समय में तो होता है, अभी कितने समय तक चलेगा वो बाद बाद में बताएंगे। पहले ही समय से उसका उतना प्रवेशक है, वो कितने काल तक उतना ही रहेगा वो तो बाद अपना विषय नहीं अभी का। कौन सा जीव है उसको अभी पहले समझेंगे हम, फिर लगातार कितने काल तक उतने का ही रहेगा वो तो बाद बाद में देखेंगे। हाँ गुणस्थान को वेदक सम्यक बने, जिस गुणस्थान में है उसी गुणस्थान में। अब ये मिथ्या तो गुणस्थान है, सम्यक मिथ्या तो गुणस्थान है, सासाधन गुणस्थान है, इसलिए वेदक सम्यक तो को भी किसी एक गुणस्थान को लिया उन्होंने। परंतु हाँ परंतु जो जिस गुणस्थान में गया है औक्षणिक सम्यक के साथ, उसका वही सम्यक का गुणस्थान चालू रहेगा, बाकी तो नीचे के है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है। वेदक सम्यक्त्व के साथ जिस गुणस्थान में होगा उपशमिक के अंतिम समय में, उसको वहां ले लेना विशेषार्थ। जिस उपशम समय दृष्टि ने अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना की है, वह जब मिथ्यात्व प्रकृति की अपकर्षण द्वारा उदीर्णा करके, क्योंकि उपशम काल समाप्त होने के बाद देखो जो अंतर कितने किया था ना, बड़ा अंतर, तो जो पूरा अंतर पूरा उपशम का काल नहीं है, उपशम सम्यक्त्व का काल नहीं है, यहां से लेकर यहां इतना अंतर किया है, तो उसके संख्यात वे भाग प्रमाण ही उपशम सम्यक्त्व का काल होता है, बाकी तो ऊपर का अंतर फिर दोबारा भरा जाता है, पूर्ण किया जाता है, अंतर पूर्ण किया जाता है उसके, यानी ऊपर के परमाणु आके फिर यहां निषेक रचना नहीं तैयार होती। तो पहले समय में क्या है, जो उदय रूप प्रकृति है वही उदयावली में आएगी, बाकी दो प्रकृतियां हैं वो उदयावली के ऊपर रहेगी। तो कहते हैं अपकर्षण द्वारा उदीर्णा करके मिथ्यात्व भाव का अनुभव करता है, तब करता है करो के हो गया। जीव की तरफ से बात की है, मिथ्यात्व भाव का अनुभव करता है, यानी वहां मिथ्या तो प्रकृति का उदय भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि क्या करे बिचारा उसका उदय हुआ इसलिए मिथ्या तो करना पड़ा, भाव भी उसी समय हुआ और उदय भी उसी समय हुआ। तब उसके प्रथम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध भी होता है और अप्रत्याख्यानावरण आदि रूप द्रव्य को अनंतानुबंधी रूप से संक्रमित कर उसका उदयावली के बाहर निक्षेप भी करता है। कहां? उदयावली के बाहर। किंतु उस समय अनंतानुबंधी चतुष्क का उदयावली में प्रवेश नहीं होता। इसलिए ऐसा मिथ्या दृष्टि जीव प्रथम समय में 22 प्रकृतियों का ही उदयावली में प्रवेशक होता है, क्योंकि उस समय उसके चारित्र मुनि की 21 और एक मिथ्यात्व ऐसे 22 प्रकृतियों का प्रवेश देखा जाता है। प्रवेश बराबर है कि वो नहीं ठीक प्रवेश। यही उपशम समय दृष्टि जीव यदि वेदक सम्यक्त्व को प्राप्त होता है तो उसके प्रथम समय में चारित्र मुनि की 21 और एक सम्यक्त्व, इस प्रकार 22 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश देखा जाता है। यही जीव यदि सम्यक मिथ्यात्व को प्राप्त होता है, यही जीव है कौन सा? उपशम समय। तो उसके प्रथम समय में, हाँ विसंयोजना के बाद, उपशम किया हुआ जो है, उसके प्रथम समय में चारित्र मोहिनी की 21 और एक सम्यक मिथ्यात्व, इस प्रकार 22 प्रकृतियों का उदयावली में लली में हुआ है, उदयावली में प्रवेश देखा जाता है। यही जीव यदि सासादन गुण स्थान को प्राप्त होता है तो उसके प्रथम समय में अनंतानुबंधी चतुष्क की किसी एक प्रकृति के साथ, इन्हें क्रोध अगर उदय रूप है तो क्रोध को ही उदय के समय से लेकर रचना होगी उसकी। चारित्र मुख की 22 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश देखा जाता है, क्योंकि जिस समय ऐसा जीव सासादन सम्यक दृष्टि हुआ है उस समय अनंतानुबंधी चतुष्क में से जिस प्रकृति की उदीर्णा हुई है उसके सिवा शेष 3 प्रकृतियों का संक्रम होकर उदयावली के बाहर ही निक्षेप होता है। ये मुख्य बात है। इस प्रकार उदयावली में आता है, जहां जहां बाहर है। ये कब होता है? जब सत्ता नहीं थी और नई रचना हुई तब ये बात होती है, अदरवाइज एक एक समय ऊपर वो पड़े रहते हैं। इस प्रकार सूत्रोक्त प्रकार के सिवा अन्य कितने प्रकार से 22 प्रकृतिक प्रवेश स्थान संभव है इसका विचार किया। यानी मूल सूत्र के बाद उन्होंने ही बताया था और उसी को विशेषार्थ फिर दोबारा बता दिया। ऐसा नहीं कि विशेषार्थ में बताया, सूत्र में बताकर फिर टीका में भी बताया था 256 नंबर, और उसी को यहाँ एक्सप्लेन करके बताया है। अभी हम कंटिन्यूस 28 से लेकर 22 तक आते हैं। 28 वाला किसके था? सम्यक दृष्टि का था कि मिथ्या दृष्टि? दोनों को, सम्यक दृष्टि को भी मिथ्या दृष्टि को भी, और सासाधन वाले को भी होगा, समय मिथ्यात्व वाले को भी होगा। 28 की सत्ता है और उसका चल रहा है। 27 का सम्यक प्रकृति की उद्वेलना पूरी हो गई, सम्यक मिथ्यात्व का यानी 26 का मैंने उल्टा पूछा है। एक तो अनादि मिथ्यादृष्टि या सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना पूरी हो गई, वो उसको भी 5 प्रकार से अलग अलग बताया। ये 26 का हुआ। 25 वाला जिसने अनंतानुबंधी की विषय योजना नहीं की है, ऐसा प्रथम उपशम सम्यक दृष्टि, वही एक ही मात्र उसमें लिया था। 24 वाला विषय योजना वाला वेदक सम्यक दृष्टि या सम्यक मिथ्या दृष्टि या अवली काल पहला मिथ्या तो में आया हुआ, संयोजना करने पर मिथ्या तो में आया हुआ जो, ये 24 का हुआ ना। 23 वाला मिथ्यात्व की क्षपणा हो गई। 22 वाला सम्यक मिथ्यात्व की भी क्षपणा हो गई और उसमें अलग अलग और भी सभी तरीके उन्होंने बता दिए जो अभी हमने पढ़े, अभी अभी पढ़े, अब आगे बढ़ेंगे। 117 पृष्ठ पर एक विषम पयड़ियो उदयावलियम पविसंती दंशन मोहनीय खविदे, दर्शन मोहनीय के नी हो गया, दर्शन मोहनीय के क्षय होने पर, यानी भी सम्यक प्रकृति का भी क्षय हो गया। 21 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, पूर्वोक्त 22 प्रकृतियों के प्रवेशक दर्शन मुनि के क्षपक जीव के द्वारा सम्यक्त्व चाहिए, सम्यक्त्व क्व हुआ है, सम्यक्त्व का क्षय कर देने पर, यानी सम्यक प्रकृति का। चारित्र मुनि की 21 प्रकृतियों का ही वहां प्रवेश देखा जाता है। यहां पर भी जिसने अनंतानुबंधी चतुष्क की विषय योजना की है, ऐसे उपशम सम्यक दृष्टि का आश्रय लेकर प्रकारांतर से भी प्रकृत स्थान की संभावना का समर्थन करना चाहिए। औपशमिक सम्यक दृष्टि जो है, जिसने विषय योजना कर दी है, क्योंकि औपशमिक सम्यक दृष्टि है मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि, वो कितने का प्रवेशक है? मात्र औपशमिक सम्यक दृष्टि 25 का, मात्र औक्षमिक सम्य दृष्टि कहा
है, तो
विसंयोजना की बात मैंने नहीं की ना।
अच्छा,
मैं क्या पूछ रही थी, क्योंकि हम उस तक डिराइव कर रहे हैं, यहाँ तो 21 की बात चल रही ना, तो जो ऑर्डिनरी औक्षमिक सम्य दृष्टि है वो कितने का है, तो उसने दर्शन मुनि को उपशमित किया है, उसके 25 का प्रवेशक है। ऐसे जीव जब अनंतानुबंधी का विसंयोजना करता है तो 25 में से 4 गए तो 21 का हो जाता है, यानी जैसा क्षायिक समय दृष्टि 21 का प्रवेशक है, वैसे यहाँ प्रथम उपशम कौन सा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने पर 21 का। विशेषार्थ सूत्र में जो 21 प्रकृतियों के प्रवेशक का प्रकार बतलाया है वह तो स्पष्ट ही है। दूसरा प्रकार यह संभव है कि जो उपशम समय दृष्टि जीव अनंतानुबंधी चतुष्क की विसंयोजना कर लेता है, उसके दर्शन होने की 3 और अनंतानुबंधी चतुष्क इन 7 प्रकृतियों के सिवाय 21 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश देखा जाता है। यद्यपि यहाँ प्रकृतियों के प्रवेश की अपेक्षा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि क्षायिक समय दृष्टि के जिन 21 प्रकृतियों का उदयावली में प्रवेश होता है, उन्हीं प्रकृतियों का पूर्वोक्त उपशम समय दृष्टि जीव के भी प्रवेश होता है, परंतु स्वामित्व भेद अवश्य है। क्या कहते हैं, जब कोई स्थान कहेंगे 21 वाला स्थान, तो 21 प्रकृतियां तो वही की वही है, तो स्थान में कोई प्रकृतियों का भेद नहीं है, फिर भी वो किसके होता है, उस स्वामित्व में भेद है। पहले जो हमने देखा था 22 में, वहां तो प्रकृति का भी भेद होगा, वहां किसी के मिथ्यात्व का उदय शुरू होगा, किसी के समय मिथ्यात्व का, किसी के समय प्रकृति का और किसी के अनंतानुबंधी का, तो उसमें प्रकृति भेद था, अब यहाँ स्वामित्व भेद है। मात्र इसलिए इसे प्रकारांतर कहा है। ते एदानी ठाणानी असंजद पायोग गाने ये और आगे बता दिया। क्या कहते हैं, ये स्थान असंयत प्रायोग्य है। असंयत प्रायोग्य क्यों, क्योंकि ऊपर के गुण स्थानों में चला जाएगा तो नॉट ओनली अनंत अनुबंधी अन्य भी का उसका भी जो कुछ। हाँ, अब कहते जो ये 28 प्रकृतिक आदि प्रवेश स्थान पूर्व में कहे गए हैं वे असंयत प्रायोग्य है, वे असंयतों से संबंध रखते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। परंतु वहां तो उदयावली में तो प्रवेश वे भी करेंगे, पांचवें गुण स्थान वाले हैं, और प्रत्याख्यान का उदय नहीं परंतु उदयावली में वो भी प्रवेश करेगा। ख्याल में आती बात, उनका उदय नहीं है तो वहां दो कषाय चौकड़ी का उदय नहीं है परंतु फिर भी उदयावली में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे यहाँ 28 का प्रवेशक है सम्य दृष्टि, तो वहां भी होगा उसका, परंतु वो तो अन्य दो रूप होकर टर्न होकर उदय में आएगी। फिर भी यहाँ कहने का क्या तात्पर्य देखेंगे हम। परंतु यहाँ पर असंयत प्रायोग्य पद का अर्थ असंयत के ही योग्य है ऐसा उदाहरणपना नहीं करना, यानी हिम्मत लगाना। असंयत के योग्य कह तो दिया है परंतु अकेले उसके लिए ऐसा मत लेना, क्योंकि 27 प्रकृतिक प्रवेश स्थान को छोड़कर शेष स्थान संयतों में भी संभव रूप से उपलब्ध होते हैं, किंतु इसके आगे के प्रवेश स्थान एकांत से संयतों के योग्य ही होते हैं। कहते हैं, देखो मुझे याद आया उदाहरण, जैसे हम त्रसनाली कहते हैं, त्रसनाली में कौन जीव रहते हैं, त्रस जीव सूक्ष्म एकेंद्रीय भी रहते हैं, यानी त्रसनाली त्रसनाली के बाहर नहीं होते हैं इसलिए उसको त्रसनाली कहा, परंतु त्रसनाली में एकेंद्रीय नहीं रहते ऐसा कहाँ हुआ। वैसे यहाँ जो असंयतों के योग्य लिखा है वहां संयतों के भी ये स्थान तो हो गए, परंतु इसके आगे के स्थान असंयतों के लिए नहीं होते। यानी असंयतों के लिए तो इतने ही स्थान है, असंयतों के लिए यहां तक ही स्थान है, आगे वाले स्थान असंयतों के नहीं है, इसलिए असंयतों के योग्य का है। उल्टा अर्थ नहीं लेना कि ये मात्र असंयतों के आगे के नहीं, वो बात यहां नहीं लेनी है। एक एक बाजू से उसका कथन है कि आगे के स्थान संयतों में हो गए, 21 तक के तो यहां ले लिए उन्होंने, उपशम श्रेणी में मरकर देवों में उत्पन्न हुए जीवों के प्रथम समय में आगे के कितने स्थान असंयतों के योग्य संभव है, अतः इसका आश्रय लेकर वे भी असंयतों के योग्य है ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए। यानी वो भी निश्चय नहीं करना चाहिए, क्या उपशम श्रेणी में मरता है और देव में जाता है तो पहले समय में वहां जो कुछ तीन कषाय चौकड़ी का तो उदय हो जाएगा, यहाँ तो मुनिराज थे, तो वहां भी ऐसा नहीं समझना कि वो असंयतों में होता है इसलिए वो असंयतों के योग्य में उनका भी प्रवेश करना, क्योंकि उन स्थानों की सूत्र में विवक्षा नहीं की है और किसी नए की अपेक्षा वे भी संयतों के योग्य देखे जाते हैं। अब ये कौन से नए हैं, कौन से स्थान है, वो अभी आगे चलकर बताएंगे। इस प्रकार असंयतों के योग्य स्थानों का यहीं पर विच्छेद करके, यानी अभी उसको बंद करके, अब संयतों के योग्य प्रवेश स्थानों का आगे व्याख्यान करते हुए आगे का प्रतिज्ञा वाक्य कहते हैं। एत्तो उपशामक पावकगाणि ताणि भणिष्यामो, आगे उपशामकों के योग्य जो प्रवेश स्थान है उनका कथन करेंगे, क्योंकि उपशमित हो गए तो उतना एक एक प्रवेश स्थान उनका एक एक प्रकृति कम हो जाएगी। इससे आगे संयतों के योग्य स्थानों का कथन करते हुए उसमें सर्वप्रथम उपशामकों के योग्य जो प्रवेश स्थान है उनका कथन करेंगे। इस प्रकार यह प्रतिज्ञा वाक्य है, क्योंकि उपशामक और क्षपकों के योग्य रूप से दो भागों में बटे हुए उन प्रवेश स्थानों की एक साथ कहने की शक्ति न होने से यहाँ पर क्रम का अवलंबन किया है। वहाँ अलग अलग बातें बनेगी इसलिए उनका अलग अलग कथन करेंगे। उपशामनादो परिवदंतेन, गिरने वाला तिबिहो लोहो ओकडिदो तथ लोभ संजलनम उदय दिन्नम दुबिहो लोहो उदयावलिय बाहिरे निक्षिप्तो ताधे एक्का पयड़ी पविसदी। वहां तो हमने 28 से लेकर 21 तक ली, अब यहाँ एक से शुरू कर रहे हैं। कैसे उपशम श्रेणी से अभी नीचे, यानी 11वें गुणस्थान से नीचे आता है तो पहले में पहले तीन लोभ की उदीर्णा शुरू होती है, परंतु उदय तो संज्वलन लोभ का होगा तो वो उदयावली उसकी तैयार होगी और बाकी के लोग उदयावली के ऊपर रहेंगे। रचना तो तीनों की, आकर्षण तो तीनों का होगा। अब यहां लिखेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे हम, उपशामना से गिरते हुए जीव ने तीन प्रकार के लोभ का अपकर्षण किया। ये तीन प्रकार के लोभ कौन से मंजू बहन? तीन लोभ। हाँ कौन से तीन? हाँ बोलो। अनंतानबंदी नहीं होता है। संज्वलन सहित तीन लेना है, संज्वलन अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान नहीं समझ। देखो जब उपशम श्रेणी चढ़ता है तो कितने की उपशमना करता है? चारित्र मुनि के 21 फलन की, क्योंकि या तो अंदर मुनि की विसर्जना करता है या क्षायिक समय दृष्टि, यानी अभी 21 की चारित्र मुनि की उपशमना करता है, तो 21 की उपशमना की है उसने, यानी जब उपशमित किया तो ये सारे अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान को भी उपशमित करते करते चढ़ा है। अब जो उतरता है तो तीन प्रकार के लोभ की उपशमना पहले छूट गई, उसकी उदीर्णा शुरू हो गई। उदीर्णा हुई यानी वहां निषेक नए तैयार हुए। उदय तो संज्वलन लोभ का होगा, तो संज्वलन लोभ तो उदयावली उदय के समय से लेकर होगा और उसके ऊपर आवली के ऊपर से लेकर अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान लोभ के वहां रचना होगी। क्यों दोनों एक साथ है ना, आठ कशांक की एक साथ बात होती है। ऐसा नहीं कि अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान नीचे उसके ऊपर अप्रत्याख्यान, ऐसा भी नहीं है। वो जो उनकी बातें होती है एट अ टाइम होती है। ये अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान हमारा जो रेगुलर क्रम है वो उसी को कायम रखेंगे हम, क्योंकि दोनों ही उदयावली के ऊपर स्थित है। तो यहाँ तो उदयावली में कितने ने प्रवेश किया, तो एक प्रकृति संज्वलन लोभ में। उदीर्णा कितने की होगी, तीन लोभ की, तीन संज्वलन की नहीं कहा, तीन लोभ की कहा। ठीक है ना, उपशमना से ये पढ़ा ना हमने एक बार। हाँ देखो अभी उसका 260 नंबर पर उसका स्पष्टीकरण है। उपशम श्रेणी में सर्वोपशम पर रह गया, सर्वोपशम करके यानी 11वां गुण स्थान प्राप्त होकर वहां से गिरने वाले जीव ने सूक्ष्म सांप्राय के प्रथम समय में जब तीन प्रकार के लोभ का द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण कर, पहले क्या किया था, अंतर किया था और द्वितीय स्थिति वाले को उपशमाया था। अब जब 11वां गुण स्थान समाप्त हुआ जो अंतर के काल में था, अब 11वें गुण स्थान के बाद भी अंतर बाकी है चारित्र मोहनीय का, अब वो अंतर को पूरा दिया जाता है। तो अंतर कैसे पूरा दिया जाता है, तो सबसे पहले लोभ के परमाणु नीचे आएंगे, जो सबसे लास्ट उपशमित हुए थे वो सबसे पहले उदीर्णा के द्वारा रचना हो जाएंगे। तो वहां भी संज्वलन लोभ तो उदयावली के उदयावली में भी और ऊपर भी सर्वत्र है, और अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान उदयावली के ऊपर उसकी भी उदीर्णा होकर रचना हो गई है। तो द्वितीय स्थिति में से अपकर्षण कर यथा योग्य निक्षेप किया, यथा योग्य यानी जो संज्वलन लोभ तो उदय के समय से लेकर और अन्य दो उदयावली के ऊपर, क्योंकि गैप तो बड़ी थी अंतर्मूर्त प्रमाण। तब एक प्रकृति प्रवेश करती है, क्योंकि वहां पर एक सोलोभ संज्वलन का ही उदयावली में प्रवेश देखा जाता है। अब उसके बाद से काले तिन्य पयड़ियों पविसंती, तदनंतर तीन प्रकृतियां प्रवेश करती है, क्योंकि पूर्व समय में उदयावली के बाहर निक्षिप्त हुए दो प्रकार के लोभ का तदनंतर समय में उदयावली के भीतर प्रवेश हो जाने से, अभी जो उदयावली के ऊपर थे मान लेते हम 17वें निक्षेप निषेक से उसकी रचना थी, अब एक निषेक गल गया तो जो 17 नंबर पर था वो 16 नंबर पर आया कि नहीं आया, तो उसको हम कहेंगे उदयावली में प्रवेश हो गया अभी उसका। तभी उदयावली में कितने प्रवेश कर रहे, तो तीन, दो वाला नहीं लिया, एक के बाद तीन को लिया। तीन प्रकृतियों का प्रवेश स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। तदो अंतम उत्तेन तिविहा माया उक्कडिता, यानी ये जो हम कहेंगे ना, पहले तो लोभ का हुआ, लोभ का कहां तक रहा, पहले तो 10वें में तो मात्र लोभ का था, फिर 9वें में फिर भी लोभ वेदक ही चल रहा है, फिर जाके माया वेदक काल होगा तो वहां माया का भी उसकी भी उदीर्णा होगी यानी अपकर्षण होगा। तो तीन प्रकार के माया नीचे आएगी परंतु उदय में तो हाँ देखो तदो अंतम उत्तेन तिलिहा माया ओकट दीदा, तीन प्रकार की माया की अपकर्षण होगा। तथ माया संजलन मुदय दिन्नम दुविह माया उदयावली बाहिरे निक्षिता साधे चत्तारी पेड़ियों पविसंती। पहले एक था फिर तीन हो गए, अभी चार हो जाएंगे। चार के बाद कितने होंगे? हाँ वो दो भी उसमें साथ मिल जाएंगे। अभी हिंदी में पढ़ेंगे। तदनंतर अंतर्मूर्त बाद तीन प्रकार की माया का अपकर्षण किया। अपकर्षण श करो उसका। उनमें से माया संज्वलन को उदय में दिया और दो प्रकार की माया का उदयावली के बाहर निक्षेप किया, तब चार प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। से काले छप पयड़ियों पविसंती, तदनंतर समय में छह प्रकृतियां प्रवेश करती हैं एक ही समय, क्योंकि वो तो आवली के ऊपर का था, वो तो आवली में प्रवेश कर गया। भले उदय के समय तक नहीं पहुंचा है परंतु आवली में तो प्रवेश कर गया है। इसलिए आपने जो पूछा था ना पूरे एक आवली तक बताना था, तो ऊपर के नीचे के नीचे आते रहेंगे तो फिर वो प्रवेश करने वाले लेना है, उदय की बात नहीं है। पर इसलिए पहला ही समय लिया है। उदयावली के ऊपर जो रचना हुई थी वो उदयावली में प्रवेश कर चुका है। उदय होने के लिए आवली काल पहले बाकी है, उदयावली में प्रवेश किया कि नहीं ये यहाँ विषय चल रहा है। उदय की बात नहीं है, उदय तो होता ही नहीं तीन का। यहाँ क्या लिखा है? तदनंतर, यानी तदनंतर समय में लिखा है, आवली के बाद नहीं लिखा। बिल्कुल, हमने देखा ना सत्रहवे निषेक से उसकी रचना हुई थी। एक नीचे का एक निषेक गल गया तो सत्रहवा निषेक सोलहवा हो जाएगा, यानी वो उदयावली में आ गया। उसी की बात चल रही ना अभी, उसी की हमने देखी थी।
तो एक का एक समय के लिए होगा,
हाँ अकेली एक प्रकृति का एक समय,
एक समय ही होगा, दूसरे समय से तीन का हो
जाएगा। हाँ दूसरे प्रवेशक,
हाँ,
वो अंतर्मूर्त चलेगा।
हाँ, माया का होगा,
माया की जब उदीर्णा होगी एक समय के लिए चार होगा,
दूसरे समय से
छह का हो जाएगा। यहाँ लिखा ना तदनंतर समय में लिखा है, समय की बात है। हाँ नेक्स्ट समय में, यानी एक का था एक भी, वो भी पहले समय में था। पहले भी एक बात ये आई थी, एक समय मैंने बोला कि वो जो कितने काल तक है वो बाद में बाद आई है। अभी ये क्लैरिटी हुई ना, वहां भी जब उपशम समय के काल के बाद मिथ्यात्व का उदय होता है तो मिथ्यात्व अकेले प्रवेश करती है। नेक्स्ट समय में तो समय मिथ्यात्व समय प्रकृति भी उदयावली में प्रवेश कर जाएगी, जो ऊपर निषेक थे वो नीचे नीचे आते चले जाएंगे। तदो अंतमुत्तेन तिविहो माणो ओकड्डिदो, तत्थ माण संजरण उदये दिन्नम दुविहो माणो उदयावली बाहिरे निक्षिप्तो ताधे सत्त पयड़ियो पविसंति। तदनंतर अंतर्मूर्त बाद तीन प्रकार के मान का अपकर्षण किया, उनमें से मान संज्वलन को उदय में दिया और दो प्रकार के मान का उदयावली के बाहर निक्षेप किया, तब सात प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। पहले एक, फिर तीन, फिर चार, चार से छह, छह से सात, हाँ सात से नौ हो जाएगी ना, दो दो बढ़ाना उसमें। से काले नव पयड़ियों पविसंति, तदनंतर समय में एक ही समय के पश्चात नौ प्रकृतियां प्रवेश करती है। तदो अंतमुत्तेन तिविहो कोहो ओकड्डिदो, तत्थ कोह संजरण उदय दिन्नम दुविहो कोहो उदयावली बाहिरे निक्षिप्तो साधे दस पयड़ियों पविसंती। तदनंतर अंतर्मुहूर्त बाद तीन प्रकार के क्रोधों का अपकर्षण किया, जैसे हमने उपशमित करने की प्रक्रिया देखी, ऐसे यहाँ पर नीचे यानी यहाँ तक उदीर्णा होकर नीचे नीचे आते चले जाते हैं और नए नए निषेक की रचना वहां होती रहती है। उनमें से क्रोध संज्वलन को उदय में दिया और दो प्रकार के क्रोधों का उदयावली के बाहर निक्षेप किया, तब 10 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। से काले 12 पैडियों पविसंती, तदनंतर समय में 12 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। यानी हो गई ना, ये तो क्रोध की, मान की, माया की और लोभ की, हर एक की तीन तीन, चार से एक 12 हो गए। तदनंतर अंतर्मूर्त बाद पुरुष वेद और 6-9 कषाय ऊपर पढ़ना रह गया। तदो अंतमूर्तेन पुरुष वेद 6-9 कषाय वेदनीयानि, कषाय वेदनीय भी कहते उसको, मैंने यहाँ वेदनीय कर्म की कोई बात नहीं है, यहाँ तो मात्र मोहनी की बात चलेगी। तो 6-9 कषाय वेदनीय बताया उसको, ओकट दिदानी तथ पुरुष वेदो उदय दिनो, 6-9 कषाय उदय रूप हो गया वहां पर, क्योंकि 9वें गुण स्थान में उसका उदय ही नहीं है, पहले तो एक वेद का ही उदय, तो यहाँ हम पुरुष वेद की बात यहाँ देख रहे हैं, तो पुरुष वेद का उदय दिन 6-9 कषाय वेदनीयानी उदयावली बाहिरे निक्षिप्ताने साधे 13 पैड़ियों पविसंति। तदनंतर अंतर्मूर्त बाद पुरुष वेद और 6-9 कषाय वेदनीय का अपकर्षण किया, उनमें से पुरुष वेद को उदय में दिया और 6-9 कषाय वेदनीय का उदयावली के बाहर निक्षेप किया। यहाँ तो साधारण केस ली है, फिर आप पूछेंगे नपुसक वेद का उदय से ही चढ़ा हुआ उसका क्या होगा, स्त्री वेद से ही चढ़ा हुआ उसके बाद बाद में करेंगे, उसका समय आएगा तो उसका उदय हो जाएगा, परंतु उदय तो जो उदय रूप होगी वही उदयावली में आएगी। अंतर्मूर्त है ना, वेद वेद का भी अंतर्मूर्त होगा ना, पहला भाग भी अंतर्मूर्त है, तो कितने हुए अभी, हाँ एक उदय रूप है और बाकी अनु, हाँ तब 13 प्रकृतियां प्रवेश करती है। तदनंतर समय में एक समय पश्चात ही 19 प्रकृतियां प्रवेश करती है, ऊपर नहीं रहे। से काले एगुण विषम पयड़ियों पविसंति, 120 पृष्ठ है। तदनंतर समय में 19 प्रकृतियां प्रवेश करती, ये तो 13 थी और 6-9 कषाय, अभी उदयावली में एक एक समय नीचे आते चले जाएंगे, ये सूत्र सुगम है। तदो अंतमुहूर्तेन इत्थि वेद मोक्कड्यूण उदयावली बाहिरे निक्षिपदी, अब पुरुष वेद का उदय कर दिया है, अब जो स्त्री वेद के उदीर्णा तो चालू हो जाएगी परंतु उदयावली के बाहर रहेंगे। तदनंतर अंतर्मुहूर्त बाद स्त्री वेद का अपकर्षण करके उदयावली के बाहर निक्षेप करता है, क्योंकि यह पुरुष वेद के उदय से चढ़ा है और उसकी बात यहाँ बता रहे हैं, और स्वोदय के बिना उदय समय से लेकर निक्षेप होना संभव नहीं है। स्वोदय ने जिस वेद से चढ़ा है ना, उसी का उदय होगा और उसके उदय समय से लेकर निषेक रचना होगी, जिसका उदय है उसका उदय से समय से लेकर निषेक रचना होती है, जो उदय रूप नहीं है वो उदयावली के बाहर उसकी रचना होती है। उसकी बात वो बाद में बताएंगे, वो बाद में उसकी उसके अलग संख्या होगी। ये क्रम से पुरुष वेद से सही चढ़ने वाले के कौन सा क्रम है उसकी बात यहाँ बताते हैं। से काले विषम पैड़ियों को विसंती। तदनंतर समय में 20 प्रकृतियां प्रवेश करती हैं। यानी अभी ये जो उदयावली के ऊपर दिया था तो उदय में एक निशे के नीचे आ जाएगा, क्योंकि उदयावली के बाहर निक्षिप्त हुए स्त्री वेद का तब उदयावली के भीतर प्रवेश देखा जाता है। यहाँ तो प्रवेश करने वाली प्रकृतियों की बात चल रही है। ताव जाव अंतरम न विनश्यति, यह स्थान तब तक रहता है जब तक अंतर का नाश नहीं होता। इससे आगे जब तक अंतर का नाश नहीं होता तब तक इस प्रवेश स्थान को अवस्थित जानना चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अंतर का नाश करने पर वो लास्ट वाली प्रकृति अभी नीचे आ जाएगी। अंतरे विनाशिज माने नऊ से वेदम उक्कडी दून उदयावली बाहिरे बहिरे हुए बाहिरे निक्षिवदी। अंतर का नाश करने पर नपुसक वेद को आकर्षित कर उदयावली के बाहर निक्षेप करता है। ये जो लास्ट प्रकृति है अंतर को पूर्ण करने वाली से काले इक्का विषम पयड़ियों को विसंति। तदनंतर समय में 21 प्रकृतियां प्रवेश करती है। नपुसक वेद का आकर्षण होने पर उसी समय अंतर का विनाश होता है। यानी तब तक वो अंतर थोड़ा 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 चल रहा था, पुनः तदनंतर समय में नपुसक वेद के साथ 21 प्रकृतियां उदयावली में प्रवेश करती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। यहां बाकी हम आगे पढ़ेंगे। ये क्रम से 1 फिर 3 फिर 4 फिर 6 7 9 10 12 13 19 21 जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो सोमानी मस्तक नमो सदा देत हो। अश्विन